है, लेकिन ये शहर भी कायम नहीं रह सकता, इसका भी खात्मा होना जरूर है।
I've stood in Rome where the great emperors and the cities that they thought they would build immortal and dig down 20 feet to even find the ruins of it.
मैं रोम में उस जगह भी गया हूँ जहाँ बड़े बड़े शहनशाह और वो शहर हैं जिनकी तामीर को वो गैर फानी ख्याल करते थे, और उनके खंडरात को तलाश करने के लिए भी 20-20 फुट खुदाई करनी पड़ती है।
I stood where the pharaohs has had their great kingdoms, and you dig down in the ground to find where the great pharaohs ruled. All of us like to think about our city and our place, but remember, it cannot stand.
मैं उस जगह भी गया हूँ जहाँ फराउनों की अजीम सल्तनतें थीं, और अब उनकी हुकूमतों के मकाम तलाश करने के लिए जमीन खोदनी पड़ती है। हम सब भी इसी तरह अपने शहर और अपनी जगह के मुतालिक सोचना शुरू करें, लेकिन याद रखें, ये कायम नहीं रह सकते।
When I was a little boy, I used to go to a great maple tree in my country. We have a lot of hardwood. And then we had this maple trees, the sugar maple, and what we call the hard maple, soft maple.
जब मैं एक छोटा लड़का था तो एक बड़े मैपल के दरख्त के पास जाया करता था। हमारे इलाके में सख्त लकड़ी के दरख्तों की बौतात थी, और फिर हमारे पास ये चीनी पैदा करने वाला मैपल का दरख्त था, और हम इसे कहते थे सख्त मैपल और नरम मैपल।
This great gigantic tree, it was the most beautiful tree. When I would come in from the fields of working the hay and the harvests, I would love to go to this big tree and sit down under it and look up.
ये कद आवर और बहुत खूबसूरत दरख्त था, और जब मैं खेतों से घास काटकर और फसल काटने के काम से फारिग होकर आता था तो मैं पसंद करता था कि इस बड़े दरख्त के पास जाऊं और इसके नीचे बैठूं और ऊपर देखूं।
And I see its great mighty branches sway in the wind. Great huge trunk. And I said, you know, I believe that this tree will be here for hundreds and hundreds of years. Not long ago I took a look at the old tree. It's just a snag.
और मैं इसके जसीम तने और हवा में लहराती बड़ी बड़ी शाखों को देखता था, और मैं कहता था, आप जानते हैं कि मुझे यकीन है कि ये दरख्त हजारों सालों तक यहाँ मौजूद रहेगा। ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैंने इस पुराने दरख्त का एक नजारा देखा कि वो महज एक टहनी सी रह गया है।
For here we have no continuing city. No, nothing here on the earth that you can look at will continue. It's got to have an end. Everything that's mortal has to give away to an immortality.
क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, नहीं, इस जमीन पर नजर आने वाली कोई चीज भी कायम नहीं रह सकती, इसका खात्मा होना यकीनी है, हर फानी चीज गैर फानी के आगे हार जाएगी।
So no matter how good we build our highways, how fine we make our structures, it all has to go. For here there's nothing can continue. Just the unseen is what continues.
बस हम अपनी शाहराएं खा जितनी भी अच्छी बना लें, इमारतें जितनी भी आला बना लें, आखिरकार को इन्हें खत्म होना है, क्योंकि यहाँ कोई हमेशा कायम रहने वाली चीज नहीं है, सिर्फ अनदेखी चीजों को क्याम हासिल है।
I remember the house that we lived in. It was an old log house, chinked with mud. Perhaps maybe many never seen a house chinked with mud.
मुझे वो घर याद है जिसमें हम रहते थे। ये पुराना सा गारे से लिपा हुआ लकड़ी का घर था। मैं शायद आप में से बहुतों ने गारे से लिपा हुआ घर नहीं देखा होगा।
But it was all chinked up with mud and the great huge logs that was in the old house. I thought that house would stand for hundreds of years.
लेकिन ये सारा घर गारे से लिपा हुआ था, और बड़े बड़े शैतीर जो इस पुराने घर में थे उनके बाइस में सोचता था कि ये घर सैकड़ों साल तक कायम रहेगा।
But you know, today where that house stood is a housing project. It's so much different. Everything's changing. But
लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ ये घर था وہاں آج ایک رہائشی منصوبہ بن چکا ہے. یہ بے حد مختلف ہے, ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے. لیکن
Now I used to see my father. He was a rather a short, stocky man, very strong. And he was one of the strongest little men that I knew of.
میں اپنے والد کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ ایک پست قد گٹھے ہوئے جسم کے مضبوط آدمی تھے. جتنے پست قد آدمیوں کو میں جانتا تھا ان میں وہ مضبوط ترین تھے.
I met Mr. Coots, a fellow that he used to work with in the logs. He was a logger. And about a year ago, and Mr. Coots is a very good friend of mine, a deacon in the First Baptist Church.
میں مسٹر کوٹس سے ملا جن کے ساتھ میرے والد لکڑی کاٹنے کا کام کرتے تھے, کیونکہ وہ لکڑی کاٹنے والا تھا. اور تقریباً ایک سال گزرا. مسٹر کوٹس میرے بہت اچھے دوست ہیں اور فرسٹ بیپٹسٹ چرچ کے ڈیکن ہیں.
And he said, Billy, you ought to be a real powerful man. And I said, no, I'm not, Mr. Coots. He said, if you took after your daddy, you would be.
اس نے کہا, بلی, تم در حقیقت ایک طاقتور آدمی ہو. اور میں نے کہا, نہیں جناب, میں ایسا نہیں ہوں. اس نے کہا, اگر تم اپنے باپ پر جاتے تو تم ویسے ہی ہوتے.
He said, I seen that man weighing 140 pounds load a log on the wagon by himself. It weighed 900 pounds. He just knew how to do it. He was strong.
اس نے کہا, میں نے اس آدمی کو دیکھا تھا جس کا 140 پاؤنڈ وزن تھا. وہ 900 پاؤنڈ وزنی لکڑی کو خود ہی ریڑے پر چڑھا لیتا تھا. وہ اس طریقے سے جانتا تھا کہ اسے کیسے چڑھانا ہے. وہ بہت مضبوط آدمی تھا.
I'd seen come into the place to wash and get ready for dinner when mother would call him. And we had an old apple tree out in the front yard. And then there was three or four small ones along towards the back.
میں نے دیکھا تھا کہ جب والدہ انہیں بلاتی تھی تو وہ رات کے کھانے کے لیے منہ ہاتھ دھونے اور تیار ہونے کی جگہ پر آ جاتے تھے. ہمارے گھر کے سامنے سین میں ایک پرانا سیب کا درخت تھا اور پچھلی جانب تین یا چار درخت تھے.
And right in the middle tree, there was an old looking glass that had been broke, mirror, large one, and had been tacked on the side of the tree with some nails bent in, kind of like what some of you carpenters listening would call coat hangers.
اور ٹھیک درمیان والے درخت پر ایک بڑے ٹوٹے ہوئے آئینے کا ٹکڑا لگا ہوا تھا جسے کیل ٹھوک کر درخت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا. یہ اسی طرح تھا جسے بڑھئی لوگ کوٹ ہینگر کہتے ہیں.
It had been bent in to hold the glass in its place. There was an old tin comb. How many ever seen an old tin, the old fashioned tin comb? I can just see it.
انہیں اس طرح موڑ دیا گیا تھا کہ شیشے کو پھنسائے رکھیں. وہاں ایک پرانی ٹین کی کنگھی تھی. آپ میں سے کتنوں نے کبھی پرانی ٹین کی کنگھی دیکھی ہے, یعنی پرانے طرز کی ٹین کی کنگھی. میں اسے اب بھی دیکھ سکتا ہوں.
And then there was a little wash bench, just a little board with a little slanting leg beneath it tacked against the tree. A little old half sulfur pump there that we pumped the water out and we washed at this old tree.
اور پھر وہاں منہ دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا بنچ تھا. یہ بس ایک کشتی تھی جس کے نیچے ایک ڈلوان ٹانگ تھی اور یہ درخت کے ساتھ لگا ہوا تھا. اور ایک پرانا چھوٹا سا نلکا تھا جسے چلا کر ہم پانی نکالتے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھوتے تھے.
And mama used to take meal sacks and make towels. Anybody ever use a meal sack towel? Well, I'm sure I'm feeling home now.
اور ہماری والدہ آٹے کے تھیلوں سے ہمارے لیے تولیے بناتی تھی. کیا کبھی کسی نے آٹے کے تھیلے کا تولیہ استعمال کیا ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے یقین ہے کہ اب میں خود کو گھر میں محسوس کر رہا ہوں.
And those big old rough towels, and when she'd give us little kitties a bath, she'd feel like she's rubbing a hide off every time she rubbed. And I remember that old meal sack, and she'd pull some of the strings out, make little tassels to kind of decorate it up.
وہ بڑے کھردرے تولیے ہوتے تھے, اور جب وہ ہم چھوٹے بچوں کو نہلاتی تھی تو وہ لگتا تھا کہ ہر رگڑے کے ساتھ ہماری کھال ہی اتار لے جائے گی. اور مجھے آٹے کا وہ تھیلا یاد ہے. وہ ان میں سجاوٹ کا پہلو پیدا کرنے کے لیے کچھ داغے نکال دیتی تھی اور وہ جالر سے بن جاتے تھے.
How many ever slept on a straw tick? Well, I will say. How many ever know what a shuck pillow was? Well, Brother Glover, I'm at home now, sure enough.
कितने लोग हैं जो घास के गद्दे पर सोए हैं? ठीक है, मैं ये कहूँगा कि कितने लोग जानते हैं कि कभी भूसे का तकिया भी होता था? ठीक है, बाय ग्लोर, अब मैं यकीनी तौर पर घर में महसूस कर रहा हूँ।
Straw tick, well, hasn't been too long since I just come off of one. It was it's good sleeping, cool.
ठीक है, अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैंने घास के गद्दे का इस्तेमाल छोड़ा है और ये हो इस पर बड़ी अच्छी और मीठी नींद आती है।
Then in winter time they take the old feather bed and lay on it, you know, and then have to put a piece of canvas over the top of us to cause the snow blowing in the cracks in the house, you know, where the old clapboard shingles would turn up, you know, and the snow would sweep through it. And oh, I can remember that very well.
और फिर मौसम सर्मा में परों का बिस्तर बिछाकर हम सोते थे, आप जानते हैं, और फिर छत के ऊपर हमें तरपाट डालनी पड़ती थी क्योंकि दरवाजों से बर्फ गुजरकर अंदर आ जाती थी। और आप जानते हैं कि जहां पर पुरानी तख्तियां ऊपर को मुड़ी हों, आप जानते हैं कि उनमें से बर्फ अंदर घुस जाती है। और हो, ये सब कुछ मुझे याद है।
And then Pop used to have a shaving brush. Ah, now this is going to get you. It was made out of corn shucks. A shaving brush with corn shucks.
और वालिद साहब एक शेविंग ब्रश भी इस्तेमाल करते थे। मैं आपको बताऊंगा, ये मकई के बालों का बना हुआ था। ये शेविंग ब्रश मकई के बालों के साथ बना हुआ था।
Take mother's old last soap that she had made, fix it up and put it on his face with this corn shuck brush and shave it with a big old straight razor. And on Sunday, you take the pieces of paper, stick around his collar, the wore celluloid collars. And put it around the collar like this to keep the lather from getting on his shirt collar. Did you ever see that done? Why, my, my.
और मेरी वालदा के तैयार करदा साबुन को लेते जो वो बनाती थी और मकई के बालों से बने हुए ब्रश से अपने चेहरे पर लगाते और एक बड़े सीधे उस्तरे से अपनी शेप बनाते और इतवार को वो कागज के टुकड़े अपने कॉलर के गिर्द चपकाते के शेव करते वक्त कमीज के कॉलर को जाग न लगने पाए। क्या आपने कभी ये काम देखा है? क्यों? ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया।
I remember a little spring down below where we used to go get a drink, a water, and get our water out of an old gourd dipper. How many ever seen a gourd dipper?
मुझे याद है कि वहाँ एक छोटा सा चश्मा भी था जहाँ से हम पानी पीने जाया करते थे और अपने लिए एक पुराने कद्दू के प्याले से पानी निकाला करते थे। आप में से कितनों ने कभी वो पुराना कद्दू का प्याला देखा है?
Well, how many of you is from Kentucky anyhow? Well, just looking here at the Kentuckians.
ठीक है, यहाँ केंटकी से आए हुए कितने लोग हैं? वाकई ठीक है, तो फिर मैं जरा अहले केंटकी को देखना चाहता हूँ।
Well, Mom, I'm right. I thought it was all Okies and Arkies out here. But look like Kentucky's moving in. Well, they did strike oil in Kentucky a few months ago, you know. So maybe that's some of them's coming this way.
ठीक है मेरे अजीजो, मैं समझता था कि यहाँ ओकाइस और अकाइस ही के लोग हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि केंटकी से भी लोग आए हुए हैं। ये ठीक है, आप जानते हैं कि चंद माह पहले उन्होंने केंटकी में तेल की हड़ताल की, शायद उनमें से कुछ लोग इधर आ रहे हों।
And then I remember when Dad used to come in and take his wash for dinner, he'd roll up his sleeves, them little short stubby arms, and when he'd pull up his arms to wash, throw the water up on his face, the muscle just wadded in his little arms.
मुझे ये भी याद है कि जब मेरे वालिद घर आते और रात के खाने के लिए हाथ मुंह धोते वक्त वो अपने उन छोटे मजबूत बाजुओं से अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लिया करते थे।
And I said, you know, my daddy will live to be 150 years old. He was so strong, but he died at 52. Here we have no continuing city. That's right. We cannot continue.
और मैं कहा करता था, आप जानते हैं कि मेरे वालिद 150 साल तक जिंदा रहेंगे, बस वो मजबूत आदमी थे, लेकिन वो 52 साल की उम्र में कूच कर गए, समझे? क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, ये सच है, हम कायम नहीं रह सकते।
Now let's take a little trip, all of us. There's every one of you here that has a life story, just as I do. And it's good to stroll down memory's lane once in a while. Don't you think so?
अब आएं, हम में से हर एक अपनी जिंदगी का छोटा सा सफरनामा ले, मेरी तरह। आप में से भी हर शख्स की जिंदगी की एक कहानी है, और थोड़ी देर के लिए याददाश्त की गली में चले जाना अच्छा होता है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते?
Just go back and let's all go back for a while, back to similar experiences as a little children.
आइए जरा वापस चलें, आइए थोड़ी देर के लिए सभी वापस चलते हैं, बचपन के ऐसे तजर्बात पर वापस चलते हैं।
And now the first part of the life story, I'll just give it a little touch because it's in the book and many of you have the book.
और अब ये जिंदगी की कहानी का पहला हिस्सा होगा, मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा क्योंकि ये एक किताब में मौजूद है और वो किताब आपके पास है।
I was born in a little mountain cabin way up in the mountains of Kentucky. They had one room that we lived in, no rug on the floor, not even wood on the floor. It was just simply a bare floor. And a stump, top of a stump cut off with three legs on it, that was our table.
मेरी पैदाइश केंटकी के पहाड़ों में एक कोहस्तानी घर में हुई। वहाँ एक कमरा था जहाँ हम रहते थे। फर्श पर कोई कालीन या यहाँ तक कि कोई लकड़ी का टुकड़ा वगैरह भी नहीं लगाया गया था। ये बिल्कुल एक नंगा फर्श था और एक दरख्त का कटा हुआ कंधा जिसकी तीन टांगे थी, ये हमारी मेज थी।
And all those little Branhams that pile around there and out on the front of the little old cabin and wallowed down looked like where a bunch of possums had been wallowing out there in the dust, you know, all the little brothers.
और तमाम छोटे ब्रहनम बच्चे इसके चौगिर्द जमा हो जाते थे, और जब तमाम छोटे छोटे भाई कोठड़ी से बाहर निकलकर खेल रहे होते थे तो ऐसे लगता था, आप जानते हैं, कि जैसे गलहरियों का कोई ग्रोह मट्टी में खेल कूद मचा रहा हो।
There was nine of us and one little girl and she really had a rough time amongst that bunch of boys. We have to respect her yet today from the things that we did in those days. She couldn't go with us anywhere, we'd run her back. She's a girl. So she couldn't take it, you know.
हम नौ भाई थे और एक छोटी बहन थी। इतने सारे लड़कों के दरमियान उसका वक्त बहुत मुश्किल गुजरता था। जिस तरह हम उसे तंग किया करते थे, अब उसके बरक्स हम उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वो लड़की थी, वो हमारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती थी क्योंकि हम उसे वापस भगा देते थे। आप समझ सकते हैं कि वो कोई मौका नहीं पा सकती थी।
So we had, and all remember that back behind the table, we had just two chairs, and they were made out of limb bark, just old hickory saplings put together, and the bottom of them laced with hickory bark. Did anybody ever see a hickory bark chair? Yeah.
बस हम और तमाम, मुझे याद है कि उस मेज के पीछे सिर्फ दो कुर्सियां थीं, और वो भी टहनियों की बनी हुई थीं। ये बस दो शाखी सांगियों को मिलाकर बनाई गई थी और पेंदे को दरख्त की छाल से भुन दिया गया था। क्या किसी ने दरख्त की छाल की कुर्सी देखी है? जी हाँ।
And I can hear Mama yet, oh, later on when we got into a place where she could have a wooden floor with those babies on her lap like this and rocking that old chair just bang diddy bang diddy bang on the floor.
और अब भी मैं अपनी वालदा की आवाज को सुन सकता हूँ। हो बाद में जब हम एक दूसरी जगह मुंतकिल हो गए जहाँ लकड़ी का फर्श था और वालदा की गोद में बच्चे होते थे और वो उस पुरानी कुर्सी को फर्श पर घसीटती थी तो धड़ धड़ की आवाजें आती थीं।
I remember to keep the little ones from going out the door when she would be washing or something. She'd lay a chair down and turn it kind of catacornered across the door to keep the little ones from getting out. When she had to go to spring to get water and so forth.
मुझे याद है कि जब वो धुलाई वगैरह का काम करने के लिए जाती थी तो कुर्सी को खींचकर दरवाजे के बीच में फंसा देती थी ताकि छोटे बच्चे घर से बाहर ना निकल सकें, और इसी तरह जब वो चश्मे से पानी लेने या ऐसे और काम करने जाती थी तो ऐसा ही करती थी ताकि छोटे बच्चे घर से बाहर ना जा सकें।
And mother was 15 years old when I was born. Dad was 18. And I was the first of the 9 children.
और जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त माँ की उम्र 15 साल और बाप की उम्र 18 साल थी और मैं 9 बच्चों में पहलौठा था।
And they told me that the morning I was born, now we was very poor, just the poorest of poor. And we did not even have a window in this little cabin. It had like a little wooden door that you open. I doubt whether you ever seen anything like that.
और मेरे वालदेन मुझे बताते हैं कि जब मैं उस सुबह पैदा हुआ हम बहुत ही गरीब थे बल्कि गरीबों में से भी गरीब तरीन थे और हमारी इस छोटी कोठरी में कोई खिड़की तक ना थी। इसमें लकड़ी का एक दरवाजा ही था जो आप खोल सकते थे। मुझे शक है कि आपने ऐसी चीज कभी देखी भी नहीं होगी।
A little wooden door that opened instead of a window, you keep it open in the daytime, you closed it at night. We couldn't turn on the electric lights or even burn kerosene in those days. We had what you call a grease lamp.
लकड़ी का छोटा सा दरवाजा था जो खिड़की की जगह खुलता था। हम उसे दिन के वक्त खुला रखते थे और रात के वक्त बंद कर देते थे। हमारे पास बिजली की रोशनियां नहीं थी, हत्ता कि उन दिनों में मट्टी का तेल भी नहीं जलाते थे, बल्कि हमारे पास वो चिराग था जिसको आप चर्बी वाला चिराग कहते हैं।
I don't know whether you ever know what a grease lamp was. Well, what do you, and did you ever burn a pine knot?
अब मैं नहीं जानता कि आप चर्बी वाले चिराग से वाकिफ हैं या नहीं। वो चिराग क्या था? ठीक है, क्या आपने और क्या कभी आपने चीड़ की गांठ लेकर जलाई है?
Just take a pine knot and light it and lay it up on a lid. It'll burn. And that's smoked up a little bit, but they had no French or anyhow to smoke up. So it just, the cabin got the smoke and it drawed good because there's plenty of roof up there for it to draw through.
इसे आग लगाकर कभी किसी सरपोश के ऊपर रखा है? ये जलेगी और इससे थोड़ा धुआं पैदा होता था। लेकिन हमारे पास कौन सा कोई फर्नीचर था जिसे धुएं का खतरा हो? बस इस तरह कोठरी में धुआं फैल जाता था, लेकिन ये धुआं ऊपर चला जाता था क्योंकि छत काफी ऊपर थी और धुएं को खींच सकती थी।
So it, and I was born on April the 6th, 1909. Of course, you know that makes me a little over 25 now.
बस मैं 6 अप्रैल 1909 को पैदा हुआ था। बेशक आप जानते हैं कि अब मैं 25 साल से थोड़ा ऊपर हूँ।
And so, the morning that I was born, mother said that they opened up the window. Now we had no doctors; it was a midwife. Yes, and that midwife was my grandmother.
और बस जिस सुबह मैं पैदा हुआ था, वालिदा कहती हैं कि उन्होंने खिड़की खोली और अब हमारे पास कोई डॉक्टर ना था, महज एक दाया मौजूद थी और वो भी और वो दाया मेरी दादी माँ थी।
And so when I was born and my first beginning to cry and mother wanted to see her child and she no more than a child herself.
और पर जब मेरी पैदाइश हुई और मेरे रोने की पहली आवाज निकली और मेरी माँ अपने बच्चे को देखना चाहती थी और हालांकि वो खुद भी एक बच्ची से बढ़कर कुछ नहीं थी।
And when they opened up the little window just at the break of day, about 5 o'clock, and there was an old robin sitting by the side of a little bush, as you all seen the picture of it in my book of my life story. An old robin was sitting there just singing for all that was in him.
और जब वो फटने के वक्त तकरीबन सुबह 5 बजे उन्होंने उस खिड़की को खोला तो एक जाड़ी के ऊपर रबन परिंदा बैठा हुआ था, जैसे कि आप सब ने मेरी सवाने हयात में इसकी तस्वीर को देखा है। जहां वो रबन परिंदा बैठा हुआ था वहां वो गा रहा था।
I've always loved robins. Now you boys out in radio land, don't shoot at my birds. You see, they're my birds. Did you ever hear the legend of the robin, how he got his red breast? I'll stop here a moment.
मैंने हमेशा रबन परिंदों से मोहब्बत की है। अब आप रेडियो के जरिए सुनने वाले नौजवानों, याद रखना, ये मेरे परिंदे हैं, इन्हें गोली मत मारना, आप समझे? ये परिंदे ये परिंदे, ये सब, वो सब मेरे परिंदे हैं। क्या आपने कभी रावण का किस्सा सुना है कि उसका सीना कैसे लाल हो गया? मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूंगा।
How he got his red breast? There was a king of kings was dying one day on the cross. And he was suffering and no one would come to him. He had no one to help him.
कैसे उसका सीना लाल हो गया? एक दिन बादशाहों का बादशाह सलीब पर जान दे रहा था। वो दुख उठा रहा था और कोई उसके पास ना आया, कोई उसकी मदद करने ना आया।
And there was a little brown bird wanted to take them nails out of the cross. And he kept flying into the cross and jerking on those nails. He was too little to pull them out. And he got his little breast all red with blood. Ever since then his breast has been red. Don't shoot him, boys. Let him alone.
वहाँ एक बुरे रंग का परिंदा था जो सलीब में से कीलों को निकालना चाहता था। वो बार बार उड़कर सलीब की तरफ आता और कीलों को निकालने के लिए झटके देता रहा। वो इतना छोटा था कि उन्हें निकाल नहीं सकता था और उसका सीना खून से लाल हो गया था। उस वक़्त से लेकर आज तक उसका सीना लाल है। लड़को, इसे गोली मत मारना, इसे छोड़ दो।
He was sitting at the side of the window, chirping as the robins sing and Dad pushed back the window, and when they pushed the little window door back, that light that you see in the picture come whirling in the window, says my mother, and hung over the bed. Grandmother didn't know what to say.
वो खिड़की की एक तरफ बैठा चहचहा रहा था, जैसे कि रावण परिंदे गाते हैं, और वालिद ने खिड़की को खोलने के लिए धकेला। वालदा बताती हैं कि जो ही खिड़की खोली गई, वो रोशनी जिसे आप मेरी तस्वीर में देखते हैं गर्दिश करती हुई अंदर आई और बिस्तर के ऊपर आकर ठहर गई। दादी अम्मा नहीं जानती थी कि ये क्या है।
Now we are was not a religious family. My people are Catholic. I'm Irish on both sides. My father is strictly Irish Branham.
अब हमारा घराना कोई मजहबी ना था। मेरे घरवाले कैथलिक थे। मैं दोनों तरफ से आयरिश नस्ल का हूँ। मेरे वालिद कटर आयरिश ब्रैनम थे।
My mother is Harvey, only her father married a Cherokee Indian. So that broke the little line of the blood of the Irish.
और मेरी वालदा हार्वे, फक्त उनके वालिद ने एक चेरोकी इंडियन औरत से शादी की, जिससे आयरिश नस्ल के खून का सिलसिला थोड़ा सा टूटा।
And father and mother did not go to church, and they married out of the church, and they had no religion at all. And back there in the mountains, there was not even a Catholic church.
और मेरे वालिद और वालदा गिरजे नहीं जाया करते थे। उनकी शादी भी गिरजाघर से बाहर ही हुई थी। उनका कोई मजहब ना था, और फिर इस कोहस्तानी इलाके में कोई कैथोलिक गिरजा भी नहीं था।
So they come over in the early settlers, two Branhams come over, and from that sprung the whole generation of Branhams as the genealogy of the family.
वो इब्तदाई आबादकारों के साथ आए थे। यहाँ दो ब्रहनम खानदान आए, जिनमें से ब्रहनम लोगों की पूरी नस्ल यहाँ पैदा हुई। ये मेरे खानदान का शिजरा है।
And then she opened, when they opened this window, this light stood in there. They did not know what to do. Dad had bought him, Mama said, a new pair of overalls for this event.
और जब दादी माँ ने खिड़की खोली, जब उन्होंने खिड़की खोली और वो रोशनी अंदर आकर ठहर गई, तो वो नहीं जानते थे कि क्या करें। वालिद ने इस मौके के लिए, वालदा बताती हैं कि एक नया लबास खरीदा था।
He's standing with his arms in the bib of the old overalls like the woodsmen and loggers used in those days. And it frightened them.
वो खड़े, वो अपने बाजू लबास के अंदर किए खड़े थे, जिस तरह उन दिनों लकड़हारे और लकड़ी लादने वाले पहनते थे, और वो उस रोशनी से खौफजदा हो गए।
Well, after I'd got up maybe 10 days old or something, they taken me up to a little Baptist church called Possum Kingdom. Possum Kingdom Baptist Church. That's quite a name.
ठीक है। और जब मैं तकरीबन 10 दिन का हुआ, तो कुछ इस तरह हुआ कि मेरे घर वाले मुझे एक छोटे से बैप्टिस्ट चर्च में ले गए, जिसे अपोसम किंगडम कहते हैं। उसका पूरा नाम अपोसम किंगडम बैप्टिस्ट चर्च था, यही नाम था।
There's an old circuit preacher, the old fashioned Baptist preacher came through there about once every 2 months.
वहाँ एक वक्ती मनाद था, वो पुरानी तर्ज का बैप्टिस्ट मनाद वहाँ 2 महीने के बाद आया करता था।
On the people would have a little service together. They'd go sing some songs, but they had preaching ever so often on the circuit rider. They paid him each year with a sack of pumpkins and a few things like that, you know, that the people would raise to give it.
तब वो लोग मिलकर छोटी सी इबादत करते और वो कुछ गीत गाते थे। लेकिन मनाद वहाँ कभी कभार ही चक्कर लगाने आता था। लोग उसे कदमों की एक बोरी और दीगर ऐसी चीजें सलाना देते थे, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वो उसके लिए इकट्ठी करते थे।
And the old preacher came by and there he offered prayer for me as a little boy. That was my first trip to church.
और वो बुजुर्ग मनाद आया और मुझ छोटे बच्चे पर दुआ की। ये मेरा गिरजाघर जाने का पहला मौका था।
At the year of about something little over 2 years old, the first vision taken place.
और मेरी उम्र तकरीबन और जब मेरी उम्र 2 साल से कुछ ज्यादा हुई तो पहली रोया दिखाई दी।
Well, they had told around in the mountains there that this light came in. So they tried to figure it up. Some of them said it must have been the sunlight reflecting on a mirror in the house, but there was no mirror in there and the sun wasn't up. So it was too early at 5 o'clock.
ठीक वो पहाड़ी इलाके में बयान करते रहे कि ये रोशनी अंदर आई थी। बस उन्होंने इसकी वजाहत करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि वो सूरज की रोशनी होगी जो घर के अंदर आईने के जरिए आई होगी, लेकिन वहाँ कोई आईना नहीं था और सूरज अभी तक निकला नहीं था क्योंकि ये सुबह के 5 बजे का वक्त था।
And then all they just passed it by, and when it's about supposed to be near 3 years old, now I have to be honest. There's things here that I do not like to say, and I wish I could bypass it and not have to say it, but yet to tell the truth, you must tell the truth. If it's on yourself or your people, be honest about it, and then it's always the same.
और फिर हो उन्होंने इसका ख्याल छोड़ दिया। और जब मैं तकरीबन 3 साल के करीब हुआ, अब मुझे दयानतदारी से काम लेना होगा। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना पसंद नहीं करता और मैं चाहता हूं कि इनको नजरअंदाज कर दूं और बयान ना करूं, लेकिन फिर भी सच्चाई को बयान करना चाहिए, वो खुद अपने ऊपर हो या आप लोगों के ऊपर हो। और अगर हम दयानतदारी करेंगे तो फिर ये हमेशा यकसा है।
My father was a long way from being a religious person. He was a typical mountain boy that drank constantly all the time. And he had gotten in some trouble in a fight. And there had been 2 or 3 men almost killed as they fighting, shooting and cutting one another with knives at some kind of a party up in the mountains.
मेरे वालिद मजहबी आदमी होने से कोसों दूर थे। वो खालस पहाड़ी नौजवान थे जो हर वक्त शराब पीते थे। एक दफा वो एक लड़ाई में मुश्किल में फंस गए। पहाड़ों में कोई पार्टी हुई जहां 2 या 3 आदमी लड़ते, गोलियां चलाते और एक दूसरे को चाकू मारते हुए तकरीबन जहां बाक हो गए।
And dad had been one of the ringleaders of this fight because it had been a friend of his that got hurt and hit someone with a chair and
मेरे वालिद इस लड़ाई के सरगोहों में से थे क्योंकि उनका एक दोस्त लड़ाई में जख्मी हो गया और उसने दूसरे को कुर्सी मार दी।
Had the man had a knife out and was going to cut dad's friend on the floor with this knife through his heart, and dad took his part. And it really must have been a terrible fight because they, from all the way down to Burksville, many miles away, they sent a sheriff up after dad, horseback.
फिर मुखालिफ ने चाकू निकाल लिया और वो वालिद के दोस्त को फर्श पर गिराकर दिल में चाकू मारने वाला था, इसलिए वालिद को दोस्त का साथ देना पड़ा। ये बड़ी खतरनाक लड़ाई थी क्योंकि वो मीलों दूर बक्सवेल में वालिद साहब के पीछे घोड़सवार अफसर भेजते रहे।
So the man was laying at the point of death. Might be some of his people listening in. I'm going to call his name. Will Yarberry was his name. They probably, I think some of them is in California of his voice.
बस वो आदमी उस वक्त मौत के मुंह में था, शायद उसका कोई अजीज यहाँ सुन रहा हो। मैं उसका नाम बताने जा रहा हूँ, उसका नाम विल यार्बर था। शायद वो, मेरा ख्याल है कि उसके बेटों में से कोई कैलिफोर्निया से हो।
But he was a bully, great powerful man, killed his own boy with a fence rail. So he was a very powerful and wicked man.
वो बहुत जसीम और बहुत ताकतवर आदमी था, जिसने हफाजती लोहे की पटली मारकर अपने ही बेटे को जान से मार दिया। बस वो बड़ा ताकतवर और बुरा आदमी था।
And so there was a great knife fight between he and dad, and my father almost killed the man, so he had to run and leave Kentucky and come across the river to Indiana.
यूं उसके और मेरे वालिद के दरमियान चाकुओं की खतरनाक लड़ाई हुई, और मेरे वालिद ने उस आदमी को तकरीबन मार ही डाला, इसलिए उन्हें केंटकी से भागकर दरिया पार इंडियाना आना पड़ा।
And he had a brother that lived at the time in Louisville, Kentucky. It was the assistant superintendent of the wood mosaic sawmills in Kentucky in Louisville.
और मेरे वालिद का एक भाई था जो उस वक्त लुइसविल केंटकी में रहता था। वो वहां लकड़ी पर नकाशी का काम करने वाले कारखाने में दूसरे दर्जे का नगरान था, जो कि केंटकी लुइसविल में था।
And so dad come to find his older brother. Dad was the youngest of the boys of 17 children.
बस मेरे वालिद ने अपने बड़े भाई को तलाश किया। अपने 17 बहन भाइयों में मेरे वालिद सबसे छोटे थे।
And so he came to find his older brother. And while he was gone for almost a year, he could not come back because the law was looking for him.
जब मेरे वालिद ने अपने बड़े भाई को तलाश किया, तो उसे वफात पाए हुए एक साल हो चुका था। मेरे वालिद वापिस ना आ सके क्योंकि कानून उनकी तलाश में था।
And then when we had heard from him by letter signed by another name, but that he had told mother how it would be that she'd hear from him.
और फिर हमें खत के जरिए उनकी खबर मिली, जिस पर कोई और नाम लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने वालदा को बता रखा था कि वो उनके मुतल्लिक कैसे खबर पाएगी।
And then I remember one day the spring, this little cabin was just behind the house, and during that time, after there's 9-11 months difference between me and my next brother, and he was still crawling.
मुझे एक चश्मे का वाकया याद है कि एक छोटी झोंपड़ी घर की पिछली जानब थी, और उस अरसे के दौरान जहां मेरी और मेरे छोटे भाई की उम्र तकरीबन 11 माह का फर्क था, और मैं अभी तक रिंग कर चलता था।
And I had a big rock in my hand, and I was trying to show him how hard I could throw this rock. And the old mud where the spring had run out of the ground and made the muddy ground.
मेरे हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था, और मैं उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितनी ताकत से इस पत्थर को कीचड़ में फेंक सकता हूँ। वहां से चश्मा फूटता था, और उसने जमीन में कीचड़ बना दिया था।
And I heard a bird, and it was singing up in a tree. And I looked up to that tree, and the bird flew away. And when it did, a voice spoke to me.
मैंने एक दरख्त पर बैठे हुए एक परिंदे की आवाज सुनी जो गा रहा था। मैंने ऊपर दरख्त की जानिब देखा तो परिंदा उड़ गया, और जब यह परिंदा उड़ गया तो एक आवाज मुझसे मुखातिब हुई।
I know you think I could not think and remember that. But the Lord God who judges the earth and the heavens and all there is knows that I'm telling the truth.
अब मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी उम्र में मैं सोचने और याद रखने के काबिल नहीं हो सकता था, लेकिन खुदावन जो मेरा मुंसिफ है, जमीन और आसमान और जो कुछ उनमें है, वो जानता है कि मैं सच बता रहा हूं।
That bird, when it flew away, a voice came from where the bird was in the tree, like a wind caught in the bush, and it said, "You live near a city called New Albany, and I've lived from the time I was 3 years old until this time within 3 miles of New Albany, Indiana."
जब वो परिंदा उड़ गया, तो उस जगह से जहाँ दरख्त पर वो परिंदा बैठा था, एक आवाज आई, जैसे झाड़ी में से हवा काटकर गुजरती हो, और उसने कहा, तू न्यू अल्बानी नामी शहर के करीब रहेगा, और मैं 3 साल की उम्र से लेकर अब तक न्यू अल्बानी इंडियाना से 3 मील दूर मुकाम पर रिहायश पजीर हूँ।
I went in and told my mother about it. Well, she thought I was just dreaming or something.
मैं अंदर गया और मैंने अपनी वालदा को इस बात के मुतल्लिक बताया। ठीक है, मेरी वालदा ने सोचा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है या कोई चीज और देखी है।
Later we moved to Indiana and father went to work for a man, Mr. Wathan, a rich man. He owns the Wathan distilleries and he owned a great shares. He's a multi-millionaire in the Louisville Colonels and baseball and so forth. And then we lived near there.
बाद में हम इंडियाना मुंतकिल हो गए, जहां वालिद साहब ने एक अमीर आदमी मिस्टर वाथन का काम करना शुरू कर दिया। वो शराब बनाने वाले कारखाने का मालिक था। उसकी आमदन बहुत ज्यादा थी। वो लुइसविल में करोड़पति था और बड़े अफसरों के साथ बेसबॉल खेलता था और इसी तरह के और मजीद काम करता था। और हमने उस जगह के करीब रिहायश इख्तियार कर ली।
Yet he could not do without his drinking, so he went to making whiskey in a still.
अगरचे मेरे वालिद गरीब आदमी थे, तो भी शराब पिए बगैर वो नहीं रह सकते थे। बस उन्होंने विस्की बनाने की एक भट्टी बना ली।
And then it worked a hardship on me because I was the oldest of the children. I had to come and pack water to this still to keep those cows cool while they were making the whiskey.
और तब इस काम से मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि मैं बच्चों में सबसे बड़ा था और मुझे इस भट्टी में पानी भरना पड़ता था ताकि उसके गिर्द चक्कर ठंडे रहें और जब उनसे विस्की बन रही होती थी।
Then he got to selling it, and then he got 2 or 3 of those stills. Now that's the part I don't like to tell, but it's the truth.
और फिर मेरे वालिद ने इसकी फरोख शुरू कर दी और फिर उन्होंने 2 और 3 भट्टियां और बना ली। और अब ये ऐसा हिस्सा है जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है।
And I remember one day from the barn coming up to the house crying because out at the back of the place was a pond where they used to cut ice. Many of you remember when they used to cut ice and put it in sawdust.
और मुझे वो एक दिन याद है जब मैं रोता हुआ गोदाम से घर वापस आया, क्योंकि उस जगह के अकब में एक तालाब था, उस जगह जहां वो बर्फ काटा करते थे। आप में बहुतों को याद होगा कि लोग किस तरह बर्फ काटा करते थे और बरादे में महफूज किया करते थे।
That's why Mr. Wathan kept ice out there in the country, and father was a chauffeur for him, a private chauffeur.
बस इसी तरीके से मिस्टर वाथन गांव में बर्फ महफूज किया करते थे और मेरे वालिद उनके प्राइवेट ड्राइवर थे।
And when this pond was full of fish, and when they would go to cutting the ice and bring it in and put it in the sawdust, and when the ice melted in the summertime, as it went down, it was kind of clean, I suppose, more like a lake ice, and they could use it not to drink, but to keep water cold, put it around the buckets and their milk and so forth.
और जब ये तालाब मछलियों से भर जाता था और जब वो बर्फ काट काट कर लाते और उसे लकड़ी के बरादे में रखते थे और गर्मियों में जब ये बर्फ पिघल कर नीचे जाती थी, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना साफ दिखाई देने लगता था जैसे बर्फ की एक झील हो। और वो इसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि पानी ठंडा रखने के लिए उसे बाल्टियों और अपने दूध वगैरह के गिर्द रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे।
One day packing water from back out at this pump, which was about a city block, I was squalling to who wouldn't have it, because I'd come from school and all the boys went out to the pond fishing. I just loved to fish.
एक दिन मैं इस नलके से पानी भरने के लिए जा रहा था, जो कि शहर के एक ब्लॉक के फासले पर था, और मैं उसको कोस रहा था, जिसके पास ये नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल से आया था और तमाम लड़के मछलियां पकड़ने तालाब पर चले गए थे। मुझे मछलियां पकड़ने का शौक था।
And so they all got to go fishing but me, and I had to pack water for this still. Of course, my, that had to be mum, is prohibition. And it was such a hardship.
मेरे सिवा सभी लड़के मछली के शिकार पर चले गए थे, लेकिन मुझे इस भट्टी के लिए पानी भरना पड़ रहा था। बिला शुबा मेरे अजीजो, मुझे इस पर खामोशी रहना था, इसकी ममानत थी, और मैं, मेरे लिए बड़ी मुसीबत थी।
And I remember coming along there with a stump toe, I had a corn cob wrapped under my toe to keep it out of the dust. Did you ever do that?
मुझे याद है कि मैं उभरे हुए पंजे के साथ चल रहा था। मैंने पांव के पंजे को मिट्टी से बचाने के लिए नीचे मकई का भुट्टा बांधा हुआ था। आपने कभी ऐसा देखा है?
Just put a corn cob under your toe like this and wrap a string around it. It holds your toe right up like a turtle head almost, you know, sticking up. You could track me everywhere I went with this corn cob under my toe or stump it, you know. I didn't have any shoes to wear.
मकई का भुट्टा पंजे के नीचे रखकर इर्द गिर्द एक डोरी लपेट ली। ये पांव के पंजे को यूं ऊपर उठा देता है, आप जानते हैं, जैसे किसी कछुए ने अपना सर उठा रखा हो। जब मैंने पंजे के नीचे ये भुट्टा बांध रखा था तो मैं जिधर भी जाता आप मेरा खोज लगा सकते थे, क्योंकि मैं जहां भी ये पांव रखूंगा आप उसे जान लेंगे।
So we never wore shoes sometimes half the winter. If we did, it was just what we could pick up somebody would give us. And clothes to what somebody charity would give us.
मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। बाज़ औक़ात हमें मौसम सरमा तक जूते पहनना नसीब नहीं होते थे। अगर हमें मिलते ही थे तो ये किसी और ने हमें दिए होते थे, और हमारे पास कपड़े भी वही होते थे जो किसी ने खैरात के तौर पर दिए होते थे।
And I stopped under this tree and I was sitting there just squalling. It was in September. Because I wanted to go fishing, I had to pack several tubs of water with little molasses buckets, just about that high, half a gallon, because it's just a little lad of about 7 years old.
और मैं इस दरख्त के नीचे रुक गया और वहाँ बैठकर रोने लगा। ये सितंबर का महीना था, इसलिए कि मैं मछलियाँ पकड़ने जाना चाहता था, लेकिन मुझे एक छोटी सी बाल्टी से बहुत से टब भरने थे। बाल्टी निसफ गैलन जितनी ऊंची थी, इसलिए मैं महज 7 साल का बच्चा था।
And I'd pour them in a big tub and then go back and get another two buckets and come back pumping it. That's the water we had. And there's going to run off a batch of that corn whiskey that night. These men with daddy up at the house.
मैं दो बाल्टियां भरकर लाता और बड़े से टब में अंडेल देता, फिर वापस जाता और उन्हें नलके से भरकर लाता, और हमारे पास यही पानी होता था। और जो आदमी वालिद के साथ घर में होते थे वो पानी के उन तमाम टपों को तैयार करने वाली विस्की के साथ ही इस्तेमाल कर देते थे।
And I was crying, and all at once I heard something making a noise like a whirlwind, something like this. Now I hope it isn't too loud, going just a noise like that.
मैं रो रहा था और अचानक एक बगोले सा शोर सुनाई दिया, और ये कुछ इस तरह से था। अब मुझे यकीन है कि आवाज बुलंद ना थी, बस की आवाज थी।
Well, it was awful quiet. Now I looked around and you know what a little whirlwind, I believe you call them little cyclones in the fall of the year. They pick up through the cornfield, you know, the leaves and so forth. In the autumn there, the leaves just begin turning.
ठीक है, मैंने इर्द गिर्द देखा, मुकम्मल खौफनाक सन्नाटा था। और आप जानते हैं वो क्या था? वो एक छोटा सा भूगोला था। मुझे यकीन है कि आप इसे गिर्दबाद ही कहते हैं। मौसम खजा में लोग मकई के खेतों में से पत्ते वगैरह उठाते हैं, और आप जानते हैं कि खजा में पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं।
And I was under a great white poplar tree, stood about halfway between the barn and the house. And I heard that noise and I looked around. It's just as quiet as it is in this room. Not a leaf blowing nowhere, nothing.
मैं सफेद चनार के एक बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था जो हमारे घर और गोदाम के दरमियानी फासले पर था, और मैंने इस आवाज को सुना। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ इतनी खामोशी थी कि जितनी इस कमरे में है, यहाँ तक कि कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था।
And I thought, where's that noise coming from? Well, I thought it must be away from here, just a lad, and it got louder and louder.
मैंने अपने दिल में कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है, और तब मैंने सोचा कि इसे जरूर ही यहाँ से दूर होना चाहिए। मैं एक महज बच्चा था और ये आवाज बुलंद से बुलंद तरीन होती जा रही थी।
I picked up my little buckets and squalled a couple more times and started up the lane. I was resting.
मैं आराम कर रहा था और उठा, और मैंने अपनी छोटी बाल्टियाँ उठा ली और दो तीन मर्तमा सिसकियाँ ली, और फिर रास्ते पर चल दिया।
And I got just a few feet from that out from under the branches of this big tree. And oh my, it made a whirl sounding. And I turned to look, and about halfway up that tree, was another whirlwind caught in that tree, just going around and around, moving those leaves.
मैं उस बड़े दरख्त की शाखों के नीचे से चंद फुट की दूरी पर था, और वो मेरे